ಓಂ ಶಾಂತಿ. ರಾಜಯೋಗ ಕೆ ಕಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಥಮ ಸತ್ರ ಮೇ ಸ್ವಯಂ ಕಾ ಸಹಿ ಪರಿಚಯ ಆಪ್ ಸಬ್ನೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕಿಯಾ ಕಿ ಹಮ್ ಸ್ವಯಂ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಆತ್ಮ ಹೈ ಸ್ವಚಿಂತನ್ ರಾಜಯೋಗ ಕಾ ಪ್ರಥಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೈ ಜಿಸ್ಸೆ ಹಮ್ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ ಕೋ ಸ್ವ ಮೇ ಸ್ಥಿತ್ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಬನ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ. ಅಬ್ ಸ್ವ ಮೇ ಸ್ಥಿತ್ ಹೋನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಹಮೆ ಯೋಗ ಕಿಸ್ಸೆ ಲಗಾನಾ ಹೈ, ವೋ ಪರಮ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಕೌನ್ ಹೈ, ಜಿಸ್ಕೋ ಹಮ್ ಸದಿಯೋ ಸೆ ಖೋಜ್ತೆ ರಹೆ ಹೈ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಸೆ ಯಾದ ಕರ್ತೆ ರಹೆ ಹೈ, ಜಿಸ್ಕೋ ಹಮ್ ಈಶ್ವರ್ ಅಲ್ಲಾ ಗಾಡ್ ಖುದಾ ಪ್ರಭು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕಹಕರ್ ಪುಕಾರತೆ ರಹೆ ಹೈ, ಯಾದ ಕರ್ತೆ ರಹೆ ಹೈ. ಯೇ ಭಿ ಹಮ್ ಸಬ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಏಕ ಹೈ, ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕಹತೆ ಹೈ, ಸಬ್ಕಾ ಮಾಲಿಕ್ ಏಕ ಕಹತೆ ಹೈ. ಔರ್ ಯೇ ವಿವೇಕ ಕಿ ಬಾತ್ ಭಿ ಹೈ ಕಿ ಪರಮ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಊಂಚೆ ತೆ ಊಂಚ ಏಕ ಹಿ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಪರಮಾತ್ಮಾ ಏಕ ಹೈ ತೋ ಉನ್ಕಾ ಸಹಿ ಪರಿಚಯ ಭಿ ಏಕ ಹಿ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ಲೇಕಿನ್ ಆಜ್ ಏಕ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಅನೇಕ ಮಾನ್ಯತಾಯೆ ಹೈ, ಅನೇಕ ಮತೆ ಹೈ. ಜಿಸ್ಕೋ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ಹೈ ವೋ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಹೀ ಭಗವಾನ್ ಹೈ. ಜಿನ್ಕೋ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸೆ ಪ್ಯಾರ ಹೈ ವೋ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಹೀ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಸಮಜ್ತೆ ಹೈ. ಕೋಯಿ ನೇಚರ್ ಕೋ ಗಾಡ್ ಸಮಜ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ಚಾರೋ ಔರ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾ ಜೋ ಅಪಾರ ಸೌಂದರ್ಯ ಫೈಲಾ ಹೈ, ಯೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೀ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಹೈ. ಕೈ ಆತ್ಮಾ ಕೋ ಹೀ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಸಮಜ್ತೆ ಹೈ ಔರ್ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ ಕೋ ಭಗವಾನ್ ಕಹಲಾತೆ ಭಿ ಹೈ. ಕೈ ಸಬ್ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಹೈ ಐಸೀ ಭಾವನಾ ರಖತೆ ಹೈ. ತೋ ಆಜ್ ಏಕ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಅನೇಕ ಮಾನ್ಯತಾಯೆ ಹೋ ಚುಕಿ ಹೈ. ಹಮಾರಿ ಬುದ್ಧಿ ಮೇ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಜೋ ಕುಛ್ ಜ್ಞಾನ ಹೈ ವೋ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮಾಓ ಸೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕಿಯಾ ಹುವಾ ಜ್ಞಾನ ಹೈ. ಚಾಹೆ ರಿಷಿ ಮುನಿಯೋ ಕೆ ದ್ವಾರಾ, ಶಾಸ್ತ್ರೋ ಕೆ ದ್ವಾರಾ, ಯಾ ಹಮೇ ಅಪ್ನೆ ಅಪ್ನೆ ಪರಿವಾರ ಕೆ ತರಫ್ ಸೆ ಜೋ ಮಾನ್ಯತಾಯೆ ಮಿಲಿ ವೋಹಿ ಹಮಾರಿ ಬುದ್ಧಿ ಮೇ ಹೈ. ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ जो भी धर्मात्माएं हुए, महात्माएं हुए, हरेक ने अपने चिंतन, साधना, अनुभव के आधार से बातें हमारे सामने रखी। श्री रामकृष्ण परमहंस का अपना चिंतन है, श्री अरविंदो की अपनी फिलॉसफी है, शंकराचार्य जी का अपना कहना है, वल्लभाचार्य जी की अपनी बातें हैं। यही कारण है कि आज एक परमात्मा के बारे में अनेक मतें हो चुकी हैं। सारी दुनिया की बात छोड़े, यहां जितने आप उपस्थित हैं, अगर मैं आप सबसे भी पूछूं कि परमात्मा कौन है, क्या आप सबके द्वारा एक विचार आएगा? नहीं। हरेक अपनी अपनी मान्यता, भावना, श्रद्धा अनुसार बताएंगे, परंतु परमात्मा केवल मानने का, भावना का विषय नहीं। परमात्मा सत्य है, उसे यथार्थ रूप से जानना है। हमें दो बात बुद्धि में स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि परमात्मा का सही परिचय कोई मनुष्यात्मा नहीं दे सकती है। अगर दे सकती थी तो हमें कब से सत्य पता चल जाना चाहिए था। अंडरस्टूड है कि परमात्मा का सही परिचय स्वयं परमात्मा ही दे सकते हैं। सत्य स्वयं ही प्रकट होता है, सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता है। परमात्मा खुद सृष्टि पर आते हैं और अपना सही परिचय हम मनुष्यात्माओं को बताते हैं। तो स्वयं परमात्मा ने पिता श्री ब्रह्मा के मुख से हम आत्माओं को उनके सत्य परिचय की जो परिभाषा बताई है, पहले वो परिभाषा मैं आपको बताऊंगी कि सही अर्थ में परमात्मा किसको कह सकते हैं, क्या उसकी व्याख्या है, क्या कसौटी है जिससे हम वेरीफाई कर सकें। तो स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से उनके सत्य परिचय की, सत्य परिभाषा की जो बातें बताई हैं, मैं पांच बातें आपके सामने रखती हूं। सबसे पहले, परमात्मा उसे कह सकते हैं जिसे सारा विश्व मान्य करे, सभी धर्म की आत्माएं मान्य करे। परमात्मा कोई एक धर्म, कोई एक देश, कोई एक जाति, समाज के पिता नहीं। परमात्मा समग्र विश्व के पिता है। सर्वधर्म की आत्माओं के परमपिता हैं, इसलिए उनका सही परिचय हम उससे ही कह सकते हैं जिससे विश्व के मुख्यतः सभी धर्म मान्य करते हैं। दूसरी बात, परमात्मा उससे कह सकते हैं जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हो। हम सब जानते हैं कि जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु भी अवश्य होती है। जो शरीर धारण करते हैं वे शरीर छोड़ते भी हैं। इसलिए परमात्मा उसे कह सकते हैं जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हों। जो जन्म लेते हैं नेचुरली प्रकृति के बंधन में बंधते हैं। शरीर क्या है? 5 तत्वों से बना है। वो प्रकृति के बंधन में बंधते हैं, स्थल और काल के बंधन में बंधते हैं। जो जन्म लेते हैं कर्म बंधन में बंधते हैं। आप जानते हैं कि आत्मा शरीर धारण करने के बाद एक क्षण भी कर्म किए बिगर रह नहीं सकते हैं। वो कर्म बंधन में बंधते जाते हैं, देह संबंध में बंधते जाते हैं। बच्चा पैदा होता है, जन्म लेते ही परिवार का सभ्य बन जाता है। वो किसी का बेटा है, भाई है, पोता है, वो संबंध में बंधता जाता है। जो जन्म लेते हैं सुख दुख के बंधन में बंधते हैं। इसलिए परमात्मा उसे कह सकते हैं जो जन्म मरण के सुख दुख के देह संबंध के कर्म के प्रकृति के बंधनों से मुक्त है। इसलिए हम परमात्मा को सदा मुक्त कहते हैं, सदा स्वतंत्र कहते हैं। और भक्ति में हम सभी भी परमात्मा से सदा क्या मांगते रहे? अक्सर हम क्या मांगते रहे हैं कि हमें इन दुखों से छुड़ाओ, हमें जन्म मरण के फेरे से छुड़ाओ, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो, जहां चित चैन पावे। हम परमात्मा से सदा मुक्ति मांगते रहे। अंडरस्टूड है कि जो स्वयं मुक्त होगा वो ही तो हमें मुक्त कर सकेगा। इसलिए परमात्मा उनको कह सकते हैं जो सभी बंधनों से, सभी प्रभावों से, सभी लेपों से मुक्त हो। तीसरी बात, परमात्मा उससे कहते हैं जिनके कोई माता पिता गुरु, शिक्षक, स्वामी, शेठ ना हो, वो ही फाइनल, हाईएस्ट, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। उनके ऊपर और कोई नहीं है जो उनके माता पिता, गुरु, शिक्षक बन सके। इसलिए परमात्मा के लिए हम कहते हैं कि वे परम पिता हैं, परम शिक्षक है, परम सतगुरु हैं, पिताओं का पिता, शिक्षकों का शिक्षक, गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, नाथों का नाथ उससे कहा जाता है। चौथी बात, परमात्मा उससे कह सकते हैं जो सदा परम है, अपने गुणों में, अपनी स्थिति में, अपने कर्तव्यों में, जो सदा परम है। ऐसे नहीं कि आज परम है, धीरे धीरे मध्यम हो जाएंगे, अधम बन जाएंगे, नहीं, जो सदा परम है। कल प्रथम लेसन में आपने समझा कि हम मनुष्यत्माओं के गुण, कर्म, स्थिति बदलते रहते हैं। ओरिजिनली हम शांत है, सत्य है, शुद्ध है, पर समय और प्रकृति के प्रभाव में आकर आज हम सभी आत्माएं दुखी, अशांत, पतित बन गए हैं। परमात्मा अपने परम गुणों में, परम स्थिति में, परम कर्तव्यों में सदा स्थित है, इसलिए हम उसे सर्वोच्च, अपरिवर्तनशील, एक रस कहते हैं। और पांचवी बात, परमात्मा वो हो सकते हैं जो सर्व ज्ञाता हो और सदा दाता हो। सर्वज्ञाता माना जो सब कुछ जानते हैं, ज्ञान के सागर है, नॉलेजफुल है, जो संसार के आदि मध्य अंत को, आलोक परलोक को जानते हैं, जो सारे ही सनातन सत्यों को जानते हैं और बताते हैं। इसलिए परमात्मा को हम सर्वज्ञ कहते हैं। मनुष्यात्माओं के लिए हम क्या कहते हैं? अल्पज्ञ है। हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है, हम जानते हैं और भूल जाते हैं, हम स्मृति विस्मृति को प्राप्त होते रहते हैं। परमात्मा के लिए कहते हैं सदा जागती ज्योत है और सदा दाता है। सदा दाता है, जो देते ही रहते हैं, देने के लिए ही आते हैं। इसलिए हम उनकी महिमा में गाते हैं कि शांति दाता, सुख दाता, शक्ति दाता, मुक्ति दाता, सदगति दाता। हम मनुष्य आत्माएं सदा दाता नहीं है, है? हाँ? नहीं, हम मनुष्य आत्माएं सदा दाता नहीं है। बेशक हम पहले दाता थे, देवता थे, देवी देवता माना देने वाला। इसलिए हर देवी देवताओं के हाथ कैसे दिखाते हैं? दाता, वरदाता। लेकिन आज हम मनुष्य आत्माएं देवता नहीं रहे हैं, आज क्या बन गए हैं? क्या बन गए हैं? लेवता, देवता नहीं लेवता बन गए, लेने वाले बन गए। तो परमात्मा के सत्य परिचय की इस सही परिभाषा को बुद्धि में रखकर अब आप विवेक से सोचिए कि सही अर्थ में किसको परमात्मा कह सकते हैं? हम तो भावना से भक्ति में सबको परमात्मा समझते रहे, लेकिन अब इस परिभाषा के अनुसार वास्तव में परमात्मा किसको कह सकते हैं? क्या आप और मेरे जैसे साधारण मानव शरीरधारी मनुष्यात्माओं को परमात्मा कह सकते हैं? कह सकते हैं? नहीं। कोई भी शरीरधारी मनुष्यात्मा को परमात्मा नहीं कह सकते। हम मनुष्यात्माएं परमात्मा की याद से महात्मा बन सकते हैं, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, देवात्मा भी बन सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकते। परमात्मा कोई पोस्ट, पोजीशन या डिग्री नहीं है जो हम मेहनत करके प्राप्त कर ले। परमात्मा कोई बनता नहीं है, अनादि अविनाशी एक परम आत्मा है ही, कोई नए परमात्मा बनते नहीं जाते हैं। जैसे एक बच्चा अपने पिता समान, पिता जैसा रूपवान, गुणवान, ज्ञानवान, विद्वान, धनवान, बलवान बन सकता है, फिर भी पिता पिता है और पुत्र पुत्र है, रचयिता रचयिता है और रचना रचना है। मनुष्यत्माएं भी परमात्मा जैसे बन सकते हैं, परमात्मा ही नहीं बन जाते। इसलिए पहली बात बुद्धि में ये स्पष्ट कर लीजिए कि कोई भी मनुष्य आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते। अंडरस्टूड है कि जो भी साधु सन्यासी है, ऋषि मुनि है, गुरु विद्वान पंडित आचार्य संत महंत जो भी है, हम उनको महात्माएं कह सकते हैं, परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा का सही परिचय न होने के कारण कोई थोड़ी भी रिद्धि सिद्धि चमत्कार दिखाते हैं, हम उनको ही भगवान समझने लगते हैं। लेकिन नहीं, वे महात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। इसलिए दूसरी बात बुद्धि में स्पष्ट रहे कि जो भी साधु सन्यासी हैं, उनको हम महात्माएं कह सकते हैं, परमात्मा नहीं कह सकते। और तीसरी बात, जो भी धर्म स्थापक हुए हैं, कौन कौन धर्म स्थापक हुए हैं, जिन्होंने आकर अपने अपने धर्म की स्थापना का कार्य किया, कौन कौन धर्म स्थापक हुए हैं, चाहे इस्लाम के अब्राहम है, मोहम्मद पैगंबर है, जीसस क्राइस्ट है, गुरु नानक जी है, गौतम बुद्ध है, महावीर स्वामी है, शंकराचार्य जी है, ये धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। और इन धर्म स्थापकों ने खुद ही स्पष्ट कहा है कि हम तो उस गॉड के मैसेंजर, हम तो उस खुदा के पैगंबर है, हम परमात्मा के पुत्र हैं। इन धर्म स्थापकों ने अपने आप को परमात्मा नहीं कहा है, ये उनके फॉलोवर्स होते हैं जो आगे चलकर अपने धर्म स्थापक में ही केंद्रित हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं और उस परम शक्ति परमात्मा को भूल जाते हैं। और चौथी बात, बहुत विवेक और निष्पक्ष भाव से हमें समझनी है कि जिन भी देवी देवताओं को हम पूजते रहे हैं, मानते रहे हैं, कितने देवी देवताओं को मानते हैं, हाँ? देखो, जिन भी देवी देवताओं को हम मानते रहे हैं, पूजते रहे हैं, वे देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। परमात्मा तो एक ही है, देवी देवताएं अनेक है। इन देवी देवताओं को सभी धर्म की आत्माएं मान्य नहीं करती, परमात्मा तो उनको कहेंगे ना जिसे विश्व के सभी धर्म मान्य करते। हम इन देवी देवताओं के जन्म की, जीवन की, इवन कईयों के मृत्यु की पूरी कथाएं, गाथाएं सुनाते हैं। हम उनके माता पिता, बंधु, गुरु, शिक्षक, सखा बताते हैं। हम इन देवी देवताओं को श्रेष्ठ कर्म करते हुए बताते हैं कि वे आए ही इसलिए कि असुरों का संहार और आततायियों को मुक्त करने के लिए, दुखियों को सुखी बनाने वो आए ही इसलिए। माना हम हर देवी देवता को श्रेष्ठ कर्म करते दिखाते हैं और उनके श्रेष्ठ कर्मों के फल स्वरूप हर देवी देवताओं को हम स्वर्गीय सुखों को भोगते हुए, दैवी राजाई करते हुए दिखाते। हर देवी देवता के मस्तक पर ताज दिखाते हैं, हर देवी देवता को सिंहासन पर बैठे हुए दिखाते हैं। ये ताज तख्त राजाई की निशानी है। हर देवी देवताओं को कितने न वस्त्र अलंकार आभूषणों से सज्ज बताते हैं, जो स्वर्गीय सुखों की निशानी है। तो ये देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। तो ऐसा कौन सा स्वरूप है जो सभी धर्मों को मान्य है, जिनके कोई माता पिता नहीं बताए हैं, जिनको स्वयंभू कहा हुआ है, ऐसा कौन सा स्वरूप है? कौन सा स्वरूप है कोई ऐसा स्वरूप जो सभी धर्मों को मान्य? स्वरूप कौन सा है? तो देखिए, मुंझने की बात नहीं है। परमात्मा को पहचानना सबसे आसान है। परमात्मा शब्द ही परमात्मा का परिचय देता है। परमात्मा मीन्स परम आत्मा, सुप्रीम सोल। जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, हमारे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, क्योंकि है वे भी आत्मा। अपने गुण और कर्मों से परम ऊंचे से ऊंच है, इसलिए हम उसे परमात्मा कहते। परमात्मा माना कोई रूप से परम की बात नहीं है, जो अपने गुण और कर्तव्यों से परम सुप्रीम है। जैसे हम किसी को महात्मा कहते, खुद को साधारण मनुष्यत्मा समझते। अब आप बताइए कि महात्मा माना ऐसा तो नहीं ना कि वो इतनी मोटी आत्मा है और हम ज्योति बिंदु आत्मा है, इसका अर्थ ये तो नहीं है ना। हरेक आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, पर जो आत्मा अपने गुण कर्म से महान है उसको हम महात्मा कहते हैं। जो अपने गुण कर्म से दिव्य है उसे हम देवात्मा कहते हैं, पर है तो हर एक ज्योति बिंदु आत्मा ना। परमात्मा भी दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। और इस चित्र में आप देखिए कि परमात्मा का ये दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप विश्व के सभी धर्मों को मान्य है। हिंदू भाई बहने ज्योति बिंदु परमात्मा को ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के रूप में पूजते। परमात्मा इतने बड़े लिंगाकार नहीं है, ये ज्योति बिंदु परमात्मा का भक्ति में पूजन के लिए बनाया गया बड़ा प्रतीक है। परमात्मा ज्योति बिंदु है जिसे हम देवों का देव त्रिदेव रचयिता कहते हैं। इसलिए श्री राम जी को भी रामेश्वर में शिव का पूजन करते हुए दिखाते। इवन आप वृंदावन में जाएंगे, श्री कृष्ण जी को भी शिवलिंग के आगे नमन करते हुए दिखाए। एक और बात विवेक से समझने की आपको बताएं, इवन शंकर जी को भी शिवलिंग के आगे ध्यान करते हुए दिखाते हैं। देखे हैं ऐसे चित्र, आगे शिवलिंग है और पीछे शंकर जी को तपस्वी मुद्रा में दिखाते हैं। अगर शंकर जी स्वयं परमात्मा है तो वो किसके ध्यान में बैठे? परमात्मा को तो कोई ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। शंकर जी को कहते ही है तपस्वी जोगी, माना उनके ऊपर कोई परम शक्ति है जिसके ध्यान साधना में वे बैठे हैं। उस परम शक्ति को ही परमात्मा कहते हैं। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हैं और शिवलिंग घर घर में, शिवालय हर शहर गांव गांव गली गली, इवन जंगलों में भी शिवालय पाए जाते। इसलिए रामेश्वर, अमरनाथ, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, इवन नेपाल में पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग प्रतीक का पूजन किया जाता है। मुस्लिम भाई बहने वो स्पष्ट ही कहते हैं कि अल्लाह नूर है, परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। यही बात अपनी भाषा में वे कहते हैं अल्लाह नूर है, और नूर मीन्स प्रकाश, ज्योति। और वे स्पष्ट बताते हैं कि नूरे इलाही, परमात्मा ये भौतिक प्रकाश बिंदु नहीं है। इलाही मीन्स अलौकिक, अभौतिक, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। इसलिए आज तक भी मुस्लिम भाई बहने मक्का हज करने जाते हैं, वहां जो काबा की इमारत है उस पर शिवलिंग आकार का, ये अंगूठे आकार का प्रतीक लगा हुआ है जिसे संगे अश्वत कहते हैं, मक्केश्वर कहते हैं। वे उनको चूमते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। इवन जापान में बौद्धिस्ट भाई बहने, विशेषकर महायान पंथी बौद्धिस्ट, शिवलिंग आकार का प्रतीक सामने रखते हैं, 3 फीट दूर 3 फीट ऊंचे स्टैंड पर शिवलिंग आकार का प्रतीक रखते हैं और उनसे ध्यान केंद्रित करते हैं। उस प्रतीक को शांतिदाता कहते हैं। जैपनीज लैंग्वेज में चिनकान शेकी कहते हैं। इवन आप गौतम बुद्ध को देखिए, महावीर स्वामी को देखिए, हर धर्म स्थापक को देखिए, हम ध्यान मुद्रा में, तपस्वी मुद्रा में दिखाते हैं, तो वो किसके ध्यान में बैठे, किससे बुद्धत्व मिला, वो है परम शक्ति परमात्मा। क्राइस्ट ने भी स्पष्ट कहा है कि गॉड इज लाइट, आई एम ए सन ऑफ लाइट। इसलिए आज भी वे मोमबत्ती ज्योत जलाकर प्रेयर करते हैं। गुरु नानक जी ने तो एक निराकार की ही महिमा गाई, एक ओंकार निराकार सतनाम करता पुरुष अकाल मूरत, एक की ही महिमा गाई है। तो विश्व के मुख्यतः जो भी धर्म है उनके धर्म स्थापकों का असली मूल इशारा एक ही है कि परमात्मा एक है, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनको हमारे जैसा शारीरिक स्वरूप नहीं है, इसलिए हमारी तुलना में उनको निराकार कहते हैं। निराकार का अर्थ यह नहीं कि कोई आकार नहीं है, जिसका अस्तित्व है उसका आकार अवश्य है, उनका अपना दिव्य आकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। इसलिए बुद्धि में ये स्मृति ऐड कर लीजिए कि जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। एक सिंपल लॉजिक कि एक मनुष्य का पिता कैसा होता है, मनुष्य होता है। एक पशु का पिता पशु है, पंछी का पिता पंछी है। हम ज्योति बिंदु आत्माओं का पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनको हमारे जैसा शरीर नहीं है, इसलिए हमारे जैसा संज्ञावाचक नाम नहीं है। हमारे नाम शरीर से है ना। मेरा ये शरीर छूट जाए तो मेरा नाम भी समाप्त हो जाएगा ना। परमात्मा का नाम हमारे नाम शरीर से, परमात्मा का नाम गुणों से है, कर्तव्यों से है। वो सारे विश्व का कल्याण करते हैं, इसलिए उनका मूल नाम शिव है। शिव का अर्थ क्या है? शिव मीन्स कल्याणकारी। इसलिए परमात्मा के लिए हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा सत्य है, अविनाशी है, शिव है कल्याणकारी, और सुंदर माना सदा पावन है। उनके अनेक कर्तव्य वाचक नाम है, अनेक गुणवाचक नाम है। हम उससे पाप कटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, विश्वेश्वर, मुक्तेश्वर कहते हैं ना। सोमनाथ, अमरनाथ, विश्वनाथ, उनके अनेक गुणवाचक नाम है, अनेक कर्तव्यवाचक नाम है। पर हमें ये अनेकानेक नामों को रटने की, गाने की, वर्णन करने की जरूरत नहीं है। हम उनके मूल नाम को याद रखते हैं, कल्याणकारी शिव, जिसको प्यार में हम यहां शिव बाबा कहते हैं। बाबा मीन्स बाबा माना पिता, बाबा माना कोई साधु बाबा की बात नहीं है, बाबा मीन्स पिता। परमात्मा हमारा पिता है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। जो पिता परमात्मा सर्वगुण और सर्व शक्तियों के सागर है, हम भक्ति में उनकी महिमा करते हैं ना, कि तू प्यार का सागर है, शांति दाता है, दुख हरता सुख करता कहते, सदा पावन, पतित पावन, पवित्रता का सागर कहते, सर्वशक्तिमान, सर्व के सदगति दाता कहते। परमात्मा के गुणों की हर धर्म में कितनी भावना से महिमा हम करते, हम कह सकते हैं कि परमात्मा सर्व गुण सर्व शक्तियों का सागर है, इटर्नल सोर्स है, जो सदा सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता देते ही रहते हैं। इसलिए इटर्नल फाउंटेन के समान ऐसे ज्ञान गुण शक्तियों के सागर परमात्मा के हम बच्चे हैं। ऐसे पिता परमात्मा कोई अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि चमत्कार नहीं करते हैं, परमात्मा वो कार्य करते हैं जो कोई मनुष्यात्मा नहीं कर सकती। उनका कार्य है कि वे हमें पतित से पावन बनाते। जब सारा विश्व विकारों के पंजे में फंस जाता है, परमात्मा आकर सद्ज्ञान का प्रकाश देकर हमें अज्ञान और विकार पापों से मुक्त होने का मार्गदर्शन देते हैं। वे हमें पतित से पावन बनाते, जो सदा पावन है वो ही तो हमें पतित से पावन बना सकता है। न सिर्फ पावन बनाते हैं, वे हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं और सारे विश्व को स्वर्ग सुखमय पावन संसार बनाते हैं। हम कह सकते हैं कि विश्व परिवर्तन विश्व कल्याण विश्व पिता ही कर सकते हैं, और ऐसा कार्य करने के लिए स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। वे खुद आते हैं, इसलिए खुदा कहे जाते हैं। जो खुद आता है, अगर परमात्मा आते ही ना हो, हमें मिलते ही ना हो, तो हम उससे क्यों याद करते, क्यों बुलाते? जरूर वो आते हैं, हमें मिलते हैं, हमने उनसे सुख पाया है, तब तो हम उससे याद करते हैं। तो परमात्मा सृष्टि पर कब आते हैं, कब आते हैं? देखो, हर कोई जानते हैं कि जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है, परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। धर्म ग्लानी का समय, जिसे ही कयामत का समय कहते हैं, क्रिश्चियंस जिसे डूम्स डे कहते हैं, फाइनल डिसीजन डे कहते हैं, तो विश्व के हर धर्म की आत्माएं जानती हैं कि जब जब अति धर्म ग्लानी होती है, परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। पर मेरा आपसे प्रश्न है कि जब जब माना कब? जब जब माना कब? अति धर्म ग्लानी का समय किसको कहेंगे, किसको कहेंगे, कौन से युग में अति धर्म ग्लानी होती? कलियुग अंत, कलियुग अंत अति धर्म ग्लानी का समय है, न कि सतयुग अंत, न कि त्रेता अंत, न कि द्वापर अंत। कलियुग अंत अति धर्म ग्लानी का समय है, इसलिए परमात्मा युगे युगे नहीं आते हैं। हर कलियुग के अंत सतयुग आदि के संधि काल संगम युग में सृष्टि पर आते। कलियुग अंत सतयुग आदि का संधि काल कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है, जब स्वयं परम पुरुष परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, ब्रह्मातन में प्रवेश करते हैं। हमें भक्ति का फल सत्य ज्ञान देते हैं और हमें उत्तम पुरुष नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी समान बनाते हैं। चित्र में एक तरफ कलियुग नर्क हेल बताया है, साधारण नर नारी बताए हैं, उस तरफ स्वर्ग हेवन देवी देवता बताए हैं, बीच में संधि काल संगम युग बताया है कि परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान यज्ञ की रचना करते हैं। आप ज्ञान यज्ञ में आए हैं, ये जौ घी तिल होमने वाला यज्ञ नहीं है, ये ज्ञान यज्ञ है। हमें ज्ञान समझकर खुद की कमजोरियों को, बुराइयों को स्वाहा करना। हमें आप सबको यहां आमंत्रित करके यही तो संदेश देना है कि वर्ल्ड साइकिल में अभी जो समय चल रहा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल समय चल रहा है। कलियुग अंत सतयुग आदि का संधि काल संगम युग। जो कलियुगी नर नारी परमात्मा के रचे हुए इस ज्ञान यज्ञ में सत्य ज्ञान और योग की शक्ति से खुद की बुराइयों को स्वाहा करेंगे, अपने वर्तमान जीवन को पवित्र योगी बनाएंगे, वे ही आने वाली सतयुगी दुनिया के देवी देवता बनेंगे। इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट समय है। हम अपने आप को परमात्मा पिता के द्वारा जितना महान पवित्र श्रेष्ठ बनाना चाहे हम बना सकते। और लास्ट बात कि परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, अवतरित होते हैं, मीन्स वे जरूर कहीं और रहते हैं जहां से सृष्टि पर आते हैं। आप यहां बैठे हैं, आप यहां उपस्थित हैं, तो मैं थोड़ी कहूंगी कि आप आते हैं, आप है ही है। परमात्मा इस दुनिया में ही होता तो हम क्यों कहते हैं कि वे आते हैं, अवतरित होते हैं। और कल आपने समझा है कि ये दुनिया हमारा भी घर नहीं है, हमारे लिए भी ये दुनिया कर्म क्षेत्र है। जब ये दुनिया हमारा घर नहीं है तो परमात्मा का कैसे हो सकता है? जो हम आत्माओं का असली घर है, चित्र में सबसे ऊपर जो गोल्डन रेड कलर से बताया है, वो हम आत्माओं की दुनिया है। ये फिजिकल वर्ल्ड है, प्रकृति की दुनिया है, वो सोल वर्ल्ड है, रूहों की दुनिया है, जहां पिता परमात्मा भी निवास करते हैं। इसलिए जब भी परमात्मा को याद करते हैं, हमारी बुद्धि और हमारी नजर ऊपर जाती है, क्योंकि वे इस दुनिया से दूर पांच तत्वों से पार परमधाम में रहते हैं। तो ये है परमात्मा का सही परिचय। हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से लगाना है। जो इटरनल सोर्स है, सभी वैल्यूज एंड सभी स्पिरिचुअल पावर्स के, हम उनकी याद से अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं, आत्मा रूपी बैटरी को शक्तिशाली भरपूर बना सकते हैं। तो हम बहुत प्यार से उस पिता की याद में बैठेंगे। अब तक हम अपनी अपनी भावना श्रद्धा अनुसार परमात्मा को मानते रहे, याद करते रहे, उससे भक्ति कहते हैं। परमात्मा जो है, जैसा है, जहां रहते हैं, यथार्थ रूप से जान पहचान कर उससे याद करना, उससे योग कहते हैं, उससे योग कहते हैं। इसमें कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं है, कोई औपचारिक क्रियाएं नहीं, खुद को यथार्थ रूप से पहचान कर आत्मा स्वरूप में स्थित होकर मन बुद्धि से पिता परमात्मा को यथार्थ रूप से जान पहचान कर याद करना, प्यार करना, उस याद प्यार में एकाग्र होना, उससे योग कहते हैं। आत्म स्थिति में स्थित हो जाए। मेरा मुझ आत्मा का असली घर शांति धाम है, जहां पिता परमात्मा भी निवास करते हैं। मैं मन की आंख से, ज्ञान नेत्र से, परम ज्योति बिंदु शिव पिता को देख रही हूं। मुझ आत्मा के अति प्रिय मेरे परम पिता, आज आपके सत्य परिचय को पाकर मुझे अपार हर्ष हुआ है। जीवन का सही ठिकाना मैंने प्राप्त कर लिया है। मेरा यही लक्ष्य है मेरे प्यारे शिव पिता, जिन ज्ञान के आप सागर हैं, जिन गुणों और शक्तियों के आप अखुट भंडार हैं, मुझे भी आपके सत्य ज्ञान को, सर्व गुणों को, सभी रूहानी शक्तियों को जीवन में धारण करना है। शांति के सागर, शांति दाता प्यारे शिव बाबा, आपकी संतान मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति दाता की संतान मैं आत्मा शांति दूत हूं। मुझे स्वयं शांत रहना है, सर्वत्र शांति फैलानी है। प्यार के सागर मेरे प्यारे शिव बाबा, आपकी संतान मैं आत्मा भी प्रेम स्वरूप हूँ। मुझे सबके साथ प्यार से चलना है, सबको सुख देना है, सबसे सुख लेना है। मेरे सर्वशक्तिमान सदा पावन पिता, मैं आपको याद करती हूँ। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र बनती जाती हूँ। मैं आपसे योग लगाती हूँ, आपसे जुड़कर मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जाती हूँ। मुझे यही खुशी, नशा और गर्व है कि मैं आत्मा ईश्वरीय संतान हूँ। मैं आपकी प्रतिनिधि बनकर इस विश्व में आई हूँ। मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ। मैं शांत और शुद्ध हूँ। शांति। ओम शांति।